राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम।
परमाशु की बात हो तो आप करो, कोई बात बोलो, याद ना हो कोई बात क्या कहे। विवेक देखो एक ऐसी चीज है, विवेक विवेक दृष्टि पशु भाव है, अलग अलग ज्ञान सत्ता से को जानना, ऋषि अनिषि को जानना, हे उपाधि का सभी आकर्षक को जानना, ये विवेक है। और विवेक पशु पक्षी वृक्ष में भी है, विवेक ऐसी चीज है जो वो विशेष जागृत होता है मनुष्य जन्म में, और जन्म में वैसा विशेष जागृत नहीं होता, विवेक है मात्र प्राणी से, वो खुदराग है पशु पक्षी है, वे भी खाने वाली चीज खाएंगे, न खाने वाली चीज नहीं खाएंगे, और अपना ठीक है वे ठीक को भी जानते हैं। ये तो अनहित पशु पक्षी को जाना, ये जो पशु पक्षी हित अनहित जानते विवेक है, ठीक और बेटी को जानते विवेक है, उस विवेक में विवेक की प्रधानता एक होती है, एक शरीर की प्रधानता होती है, तो शरीर की प्रधानता तब तो पशु पक्षी सब जानते हैं ये शरीर ठीक रहे। जैसे कहावत है कि ऊंट सोयो आग सारी सोयो डाक, खाते नहीं ऊँट आग नहीं खाते, आग हरी हरा सब्जी से बचता है, भूखा मरेगा तो आग नहीं खाएगा, ऐसे बकरी है वो ढाक नहीं खाएगी, ढाक का पत्ता जिसकी पत्तला बनती है पत्तों की भी बनती है आजकल मुख्य रूप से, वो मारवाड़ी में खा कर रखा है, खा कर रखा है उसको, तो उसके पत्तों को बकरी नहीं खाती। ये विवेक है, ये खा दिया है, ये खा दिया है, कभी भी कभी कुत्ता घास खाता है, कुत्ते का घास खाद्य नहीं है, खाता है कभी, देखा होगा आपने, मैंने देखा है, तो घास का है तो घास के लायक उनके दांत नहीं है, गाय आदि के दांत होती है घास की लायक होती, घास के लायक उनके दांत नहीं होते, क्या चबाता है फिर ताल में चिप जाता है तो उल्टी होती है, तो बीमारी हो जाती है उल्टी के लिए खाता है, तो जिससे ठीक हो जाए बीमारी इससे खाता है, तो उनमें भी ये विवेक तो है शरीर तक का, परंतु आत्मा आत्मा का नित्य अनित्य का सार असार का सदगति दुर्गति का ये ज्ञान मनुष्य में है, ये मनुष्य में ज्ञान, झूठ बोलने वाले भी ये जानते हैं कि ये झूठ है ये सच है, जानते हैं, जानते हो झूठ बोलते हैं, धोखा देना अच्छा नहीं है तो फिर धोखा देते हैं, कपट करना अच्छा नहीं फिर कपट करते हैं, दूसरा का हित करना अच्छा है फिर भी अहित करते हैं, नुकसान करते थे दूसरों का जान करके, चोरी करना अच्छा नहीं है चोरी करते हैं, रावण से त्रिलोक की डरती थी, रावण बस बरती नरनारी ऐसा था, और सीता जी की चोरी करने के लिए स्वामी की नहीं ये तो देखता है करता वो कुत्ता डरता है ना ऐसे डरता है, यूं देखता यूं देखता यूं देखता है, तो भीतर से मना होती है ये काम करने लायक नहीं है नहीं करना चाहिए, ऐसे विवेक पता लगता है आपको, और विवेक का जो आदर करोगे क्यों इतना विकसित होगा विवेक स्वतः स्वाभाविक आपका कल्याण अकल्याण सब बता देगा, विवेक में ताकत ही है। ये विवेक ऐसी एक शक्ति है, एक ताकत है, भगवान की देन है। ये विवेक कर्म का फल नहीं है, कर्म भगवान कर्म है, कर्म का फल नहीं है विवेक। बुद्धि कर्मानुसार ही नहीं, बुद्धि को तो कर्म के अनुसार बताते हैं। तो विवेक है ये बुद्धि का कार्य नहीं है। प्रायः पढ़े लिखे समझदार आदमी दूसरों के कहेंगे क्या, वे भी विवेक को बुद्धि का कार्य समझते हैं। बुद्धि का कार्य नहीं है, शुभ कर्मों का फल नहीं है। अगर माना जाए कि शुभ कर्मों का फल विवेक है, तो शुभ कर्म कौन से, अशुभ और शुभ दो का विवेक पहले होना चाहिए ना। तो अशुभ ना करे शुभ करे, तो विवेक बिना शुभ करे अशुभ का त्याग कैसे करेंगे। तो विवेक पहले हुआ कि कर्म पहले हुआ, पहले विवेक है। विवेक बिना शुभ कर्म, शुभ कर्मों का फल अच्छा हो, विवेक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। विवेक अनादिकाल से है। कहते अनादि क्या पता है इसका, तो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, तो दोनों अनादि है, तो दोनों का भेद अनादि नहीं है क्या। उभावपि लिखा दोनों, तो दोनों का भेद है कि नहीं। ये पहले से है, जब से प्रकृति पुरुष है तब से इनका भेद भी पहले से है। वेदांत माता भेद का इनके आपस में विजातीय का सजातीय का भेद का ज्ञान स्वतः है। तो भेद का ज्ञान है इसको तो विवेक कहते हैं। और विवेक क्या है, कुछ जानवर तो नहीं है, दोनों का अलग अलग जानना है वो विवेक है। विवेक इतने में सीमित नहीं है कि संसार से राग बैराग करना है। विवेक बैराग समाधि से संपत्ति मोक्ष होता, जिसमें विवेक हो जाए तो बैराग हो जाएगा। तो केवल सत असत का ही विवेक नहीं है, नित्य अनित्य का ही विवेक नहीं है, हर एक बात में विवेक है। विवेक पहले है पीछे काम होगा। जैसे हम चलते हैं तो आंख का ज्ञान पहले होगा, ऊंची नीची जमीन कैसी है कैसी है ये बाण ज्ञान पहले, फिर पग सर से पहले देख करके। इस तरह से हर एक कार्य करो उससे पहले विवेक आता है। उस विवेक का अनादर करने से जरूरत रहती है गुरु की, ग्रंथों की, इनकी जरूरत रहती है विवेक का अनादर करने से। नहीं तो विवेक भगवान ने दे रखा है और सबसे बढ़िया गुरु है वो विवेक। विवेक का आदर करेगा वही गुरु का आदर करेगा, विवेक का आदर करेगा वही ग्रंथों का आदर करेगा, वेदों का शास्त्रों का वही आदर करेगा जो अपने विवेक का आदर करेगा। अपने विवेक का आदर करेगा नहीं करेगा तो सीधे सीखे हुए शास्त्र काम नहीं करेंगे, सीखी हुई बातें काम नहीं करेगी। अपने विवेक का आदर नहीं करेगा तो अपना विवेक है उसका आदर करो, उसको महत्व नहीं देते। जैसे रावण चोरी करने को गया तो चोरी कर ली, डर लगता है, विवेक कहता है मत करो, फिर वो उतार से चलता है, वो आता है वो गिर रहा है तो उसे देता है कौन है मैं ना कर सके, फिर विचार भी फिर कह रही है टाइम ऐसा पता लगता है। तो विवेक सब में है, पशु पक्षियों में बनो वो उतना ही है, शरीर का निर्वाह है जितना ही। विवेक नहीं है तो छाया और घाम का ज्ञान कैसे होगा। घी शीत पड़ता है, वर्षा होती है, हवा होती है, हरेक जंगली पशु पक्षी भी सहारा लेकर बैठते हैं। इधर से ठंडी ज्यादा आती है तो उस जगह सहारा लेकर बैठेंगे। ये विवेक है सब में, पर उनका शरीर तक है। ये परलोक तक का विवेक मनुष्य में स्वतः है। अगर ये विवेक का आदर करने लगे, विवेक के अनुसार चलने लगे, विवेक बढ़ता है स्वतः स्वाभाविक विकसित होता है। तो विवेक मूल में बढ़ता घटता नहीं है, पर आदर करने से विकसित होता है, अपने समझ में आती है ठीक तरह से, अलग अलग दिखने लगता है आदर करने से। निरादर करने से उसे पता नहीं लगता, कोई बतावे तो हम समझे, बिना बताए हमें क्या पता लगे। तो पता लगाने का विवेक है अपने में, कोई नया होगा तो पैदा नहीं होगा विवेक, अनादि है। जैसे प्रकृति पुरुष अनादि है तो जड़ चेतन स्थावर जंगम इनका भी विवेक है, स्वतः स्वाभाविक अनादि, और वो सबके पास में है। और ये जो तत्व ज्ञान होता है ये विवेक ही परिणित होता है। जैसे आठ अंतरंग साधनों में सबसे पहला विवेक है, तो तत्व ज्ञान होने पर अंत में विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। विवेक खुद ही सत और असत दो नहीं जुड़े, दो होते असत का त्याग और सत का ग्रहण, यूं करके असत का नित्य अत्यंत अभाव हो जाता है तो वो विवेक ही परिणत हो जाता है, ज्ञान में बोध हो जाता है, परमात्मा सत्य होगा बोध, तो वो विवेक है, वो विवेक रहते हुए हम तो पार है। इस बात से जड़ रहते हुए प्यासा मर रहे हैं, भोजन रहते हुए भूखा मर रहे हैं, विवेक होते हुए हम तो पार है, क्यों विवेक आदर नहीं करते। मेरी तो ऐसी प्रार्थना है भाई बहनों सब सबसे, आपको जो खराब लगता है वो काम मत करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा सेवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आप दूसरों से अपने लिए जैसा बर्ताव नहीं चाहते हैं वो बर्ताव औरों के साथ मत करो। अब किसको ज्ञान नहीं बताओ, धर्म सर्वस्व का है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म सर्वस्व पूरा का पूरा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो ये विवेक स्वतः है, आदर नहीं करते उसको, बार बार ठुकराते हैं तो विवेक छिप जाता है, वो काम नहीं आता है। अरे इसका आदर करने लगो तो बहुत स्वतः किसी गुरु और किसी ग्रंथ और किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा विवेक दिया है मनुष्य शरीर दिया भगवान ने कृपा करके, कभी कभी करुणा नर दे ही देश ईत बिनु हरित सने ही, तो करना करके बिना हेतु कृपा करने करके डबल कृपा होगी भगवान की, बिना हेतु सने ही ये कृपा रूप स्वभाव है, और करुणा करी कृपा करके तो दोगुनी कृपा हुई है भगवान की, मनुष्य शरीर दिया है, पर मनुष्य शरीर दे दे और मनुष्य शरीर में करने लायक ज्ञान न दे ऐसा हो सकता नहीं। किसी आदमी कहीं नियुक्ति की जाए तो अन्न जल की रहने की ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, करते हैं सब लोग करते हैं, तो भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर दे दिया और मानव शरीर में क्या करना चाहिए ये विवेक दिया ही नहीं, हो नहीं सकती थी, पोल हो सकती वहां कभी नहीं हो सकता। तो विवेक भी स्वतः दिया हुआ है मानव शरीर के साथ में, पर ये निरादर करता विवेक का, विवेक को महत्व नहीं देता, विवेक को महत्व नहीं देता, उल्टा काम करता है, तो रोटी रहते हुए भूखा मरता है, पानी रहते हुए प्यासे मर रहा है, तो विवेक रहते हुए हम तो पा रहा है। ये विवेक ज्ञान सबको है, अकारण काम करने बिना कर रहा है काम करने में क्यों आता है ऐसा, हमने ऐसे मनुष्य को देखा है, मिले हैं। एक सज्जन थे वो बहुत ही मांसाहारी थे दादा, तो उनसे बात होते थे दिन मारो उजड़ो भोजन हो
सज्जनी महाराज जी, वो सज्जन क्या थे मनसाली,
वो कहा कि उस दिन मारे भोजन उजड़ो भोजन हो, सुन उजड़ो भोजन मानो स्वच्छ निर्मल भोजन था, अर्थात मांस नहीं था उसने, तो मांस खाते हुए भी उजड़ो नहीं हो ना, मैल हो नहीं, तो ज्ञान नहीं आप थोड़ी है, हाँ वो भी माना है, वजन मारे उजड़ो भोजन हो, मारवाड़ी भाषा में कहे उसमें, तो मेरा असर पड़ा कि उजड़ो भोजन मानो स्वस्थ निर्मल भोजन शुद्ध भोजन था उसने मारे, तो मांस आहार करते हुए भी उसको आहार को तो मेला ही मानते थे कि नहीं, तो उजड़ो भोजन क्यों कहे हो, मेरी बिचोड़ी बात है, तो विवेक न हो ऐसी बात नहीं है, विवेक आदर नहीं करते, तो उजलो भोजन तो एक दिन उजलो रोज उजलो करो, मेलो भोजन करो क्यों, उजलो भोजन करो, उजलो तो समझेंगे उजलो मेलो मतलब उस दिन हमारा पवित्र भोजन था, अच्छा भोजन था उस दिन, मैं गया ऐसी बात थी। तो उनको ज्ञान न हो ये बात नहीं है, ज्ञान का आदर नहीं करते फिर ज्ञान का पता नहीं लगता, आदर न करने से वो छिप जाता है लुप्त हो जाता है, आदर करो तो प्रकट हो जाएगा, ठेठ मुक्ति तक पहुंचा देगा, इतना विवेक भगवान ने मनुष्य मात्र को दिया है, इस वास्ते मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। ये जो अधिकार मानते हैं भाई, ये साधन चतुष्टय संपन्न होता है तब वो विवेक अधिकारी होता है, साधन चतुष्टय तो ये विवेक बैराग्य समाधि मोक्ष साधन चतुष्ट है। इसके बाद श्रवण मनन निर्ध्यासन फिर तत्व पदार्थ का संशोधन, ये 8 अंतरंग साधन है। तो ये साधन सब करे तो असाधन साधन का ज्ञान है कि नहीं? नहीं तो साधन असाधन ज्ञान नहीं तो साधन ही करे असाधन न करे, ये कैसे कैसे आई, किसने बात आई? ये स्वतः होगा बिल्कुल। छोटे बच्चे को भी देखो, साथ ही बोलेगा बालक को कुसंग नहीं होगा तो झूठ नहीं बोलेगा वो, तो झूठ है। संग करने से झूठ सिखाया जाता है तब झूठा बोलता है, नहीं तो स्वतः साथ बोलेगा, स्वतः बात ठीक तरह से करेगा वो। ये बुरे आचरण करके विवेक का निराश कर करके और अपने ज्ञान को लुप्त कर दिया, स्वयं अपने आप ज्ञान को आदर न देने से लुप्त हो गया। अब अपने को पता नहीं लगता क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा हो गई। तो विवेक रहते हुए दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, वस्तु के अभाव से दुख हो वो तो क्या करे, है नहीं क्या करे, अन्न है नहीं खावे क्या, मर जाएंगे, पानी है नहीं पिए क्या, मर जाएंगे, नहीं है क्या, है नहीं, ऐसे विवेक है नहीं है, बात नहीं है। विवेक है लौकिक चीजों का भाव अभाव तो प्रारब्ध के अधीन है, परंतु विवेक प्रारब्ध के अधीन नहीं है, ये तो स्वतः भगवत दत्त है, सबको दिया है, दिया है अपनी योग्यता के अनुसार। ये विवेक वो अनुसार क्यों है कि मनुष्य शरीर पा करके विवेक का निरादर करता है, इस बात दुख पा रहा है, कष्ट उठा रहा है। झूठ बोलने वाले ये सीख समझते, हम कहते हैं ऐसा झूठ बोलने वाले भी कहते हैं, हम सच्ची बात कहते हैं, सच्ची सच्ची क्यों कहते हो, झूठ झूठ कहते हैं, यूँ बोला करो नहीं, झूठ सच्चा सच्चा बोलते हैं, यूँ कह करके झूठ चलाते साथ में। तो ये अच्छाई है उसकी चोरी में बुराई चलती है। रावण भी सीता जी को लेने को गया तो साधु बना, साधु तो साधु बना हुआ तो ठगाई में आ गई। काल में भी गया तो साधु बना जो हनुमान जी आ गए। और कितने सीता जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट बर दीन जानकी माता, माता ने ये वरदान दिया। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नव निधि दाता है, देने वाले है, तो अष्ट सिद्धि के दाता वाले उसको साक्षर राक्षस के भेंट में आ जाए, राक्षस भेंट में आ जाए, कैसे आ जाए, उनकी विवेक नहीं था, ऐसी बात नहीं, सब परेशान से थे वो। रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे, ऐसे जानते हुए उनमें भूल होती क्यों होती है। संतों का हृदय विलक्षण होता है, वे परीक्षा नहीं करते, परीक्षा करते हैं उनका संत हृदय शुद्ध नहीं होता है, वो परीक्षा करते हैं बाबा जी कहते हैं पानी में कैसा है, तो परीक्षा करने वाले की श्रद्धा नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, तर्क करता है, वो तर्क से तोलता है संतों को, जो भी जैसे कैसे है उन प्रश्न करता है, ये श्रद्धा नहीं है। और अच्छे पुरुष होते हैं वो दूसरे पर संदेह नहीं करते, अगर संदेह करते कैसा है, पट जान जाते। सीता जी अष्ट सिद्धि नव निधि का वरदान देने वाले, अरे सीता जी भूल में आ गई, कैसे आ सके, हो नहीं सकता ये। परंतु वो कभी बहम करते ही नहीं, दूसरे पर संदेह करते ही नहीं, उस पर ख्याल करते ही नहीं, देखे ही नहीं, वो देख रहे परीक्षा करना ये कोई सज्जनों का काम थोड़ा ही है, इस वास्ते नहीं करते, इस वास्ते ख्याल नहीं करते, उधर वो सब नहीं समझे। कहावत है बाबा जी संसार कैसा, के बच्चे आप जैसा, जैसा आप हो वैसे संसार दिखता है उनको, भलों को भला दिखता है, बुरों को बुरा दिखता है संसार, पर संसार बुरा नहीं है। एक बात बताऊं, आप ध्यान देकर सुने सब छोटे बड़े भाई बहन, हमारे में जितनी बुराई है उतने से अधिक बुराई नहीं मानते हैं, कम बुराई मानते हैं, और अच्छाई हमारी है उससे ज्यादा अच्छाई मानते हैं दुनिया। आप कसौटी का देखो दुनिया बुरी कैसे हुई, हम जितने बुरे हैं उतना बुरा नहीं मानते हैं, बुरा मानते हैं थोड़ा मानते हैं, और भलाई थोड़ी हो तो ज्यादा भलाई मानते हैं। ये दुनिया है, स्वाभाविक दुनिया की चाल है। तो बुरा कौन है, अपना ही है। बुरा तो देख लो, मैं सदा बुरा न दिखे कोई, जो घट देखूं अपना तो मुझसे बुरा न कोई, मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, ये साफ दिखता है कि ये हमारी भूल है, हमारी गलती है। अगर हमारी गलती है तभी तो गलती के सुधारने की हमारे पर जिम्मेवारी है, अब जानते ही नहीं हम उपाय आता ही नहीं तो फिर हमारी जिम्मेवारी कैसी, जिस बात को हम जानते ही हमारे से कोई जिम्मेवारी नहीं हमारे पर। अभी मेरे को मारने लगे कि पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो नहीं तो मारेंगे, तो मार भरे तो मैं पढ़ लूंगा अंग्रेजी कैसे पढ़ लूंगा, नाम है जानते ही नहीं, तो हमारे पर वो लागू होता ही नहीं नियम, अबे मारे तो मार लो भाई कुछ भी करो, मारने के पैसे अंग्रेजी पढ़ लेंगे हम उर्दू पढ़ लेंगे कैसे जानते, अक्सर ही नहीं जानते पूरा भाषा ही नहीं जानते, तो जितना जानते उतना ही आपके करने की बात है। इस वास्ते वास्तव में सच्चा हृदय जो सच्चा हृदय साफ सरल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जैसे कोई पाप है वे पाप सच्चा सच्चा पाप अपना कह दे साफ साफ ये पाप है, वो कहने से कल्याण हो जाए। कल्याण कैसे हो जाए कि पाप की सच्चाई कही ही नहीं उसने, ये बात है सच्चे जैसे सरल हृदय से कहते ये दोष है, दोष मिट जाते हैं, दोष मिट जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाता है, हिम्मत होनी चाहिए वैसी। जैसे व्यास जी महाराज ने श्लोक बद्र कई जगह लिख दिया कि मैं ऐसे व्यभिचार से पैदा हुआ, है किसी की ताकत ये लिखने की कहने की, है सामर्थ्य अपने में, श्लोक बद्र लिख दिया, ग्रंथ ग्रंथ लिख दिया, इस तरह से पराशर में पैदा हुआ। बोलो ये ताकत कहाँ है किसी में, अगर ये ताकत हो जाए तो कल्याण होने में देरी होगी, क्यों सच्चाई का बल तो सच्चाई होता है, अरे जैसा वैसा कहता है तो सच्चा कहता है कि नहीं, तो सच्चे का फल सच्चा ही होगा, सच्चा क्या मुक्ति होगी कल्याण होगा और क्या होगा आप बताओ, तो वो सच्चाई अपने तो सच्चे में चलना, ये विवेक कहता है सास बोलो झूठ मत बोलो अन्याय मत करो न्याय करो, ये विवेक कह रहा है, अपने आप स्वयं को विवेक होता है, आप से आप है विवेक, वो भगवत दत्त है, भगवान की विभूति है, ये वो कर्म का फल नहीं है और हमारे उद्योग का फल भी नहीं है, पुरुषार्थ का फल नहीं है, क्रिया का फल नहीं है, पदार्थों का फल नहीं है, शरीर का फल नहीं है, बुद्धि है वो क्या है, विवेक जागृत होता है, जैसे बिजली तारों में सब जगह रहती है पर जहाँ पर वो लट्टू लगा है उसमें वो प्रकाश होता है, ऐसे बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, बुद्धि का गुण नहीं है विवेक, प्राय पढ़े लिखे मानते बुद्धि का गुण विवेक, बुद्धि का गुण विवेक है, तो बुद्धि है बुद्धि का कारण प्रकृति है, प्रकृति से अतीत परमात्मा है, उसको कैसे जानोगे, बुद्धि तो वहां पहुंचती नहीं, बुद्धि प्रकृति से पहुंचती, क्यों कार्य होता है वो कारण को पेट में नहीं ले सकता, जैसे पृथ्वी से घड़ा बनता है तो घड़े की ताकत नहीं कि संपूर्ण पृथ्वी को अपने में ले ले, कैसे ले लेगा, वो तो कार्य है, ऐसे बुद्धि है वो कार्य है, प्रकृति महान तदो अहंकार तस्मात गुणा बुद्धि से महत्व होता है, महत्व से महत्व उस बुद्धि है, जो महत्व सर्व से बड़ा तत्व वो महत्व तो बुद्धि है, वो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति को बुद्धि नहीं समझ सकती, पृथ्वी के अतीत को कैसे समझेगा, जड़ चेतन प्रकृति और पुरुष दोनों के भेद को कैसे समझेगी बुद्धि, तो बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, जैसे लट्टू में प्रकट होता है दीपक, बिजली वो ऊर्जा नहीं है, बिजली तो कारण है उसका, सब चारों में मौजूद है, जहाँ बल्ब होता है प्रकाश हो जाता है, जहाँ बुद्धि होती है उसका विवेक प्रकट हो जाता है उसमें, तो वो विवेक रहते हुए आदमी दुख पा रहा है मुफ्त में, ख्याल ही नहीं करता, सिर्फ सोचता ही नहीं। फूला सिंह जी की बात मैं कहता हूँ, फूला सिंह जी सिख थे, गौवा चराया करते, एक संत के कहने से भजन में लग गया, तो भजन नहीं कहते वो लेखा कहते, लेखा करता हूँ, लेखा लोग लेखा करें हाथ पर, जो लेखा करता हूँ नाम ही लेखा उनका, एक पंडित ने जी ने लिखी पुराण कल्याण आई मैंने पढ़ी है, तो उनको पूछा कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम, सात बोलने से उनका वचन सच्चा हो जाता है, कह जैसे ही हो जाता है, क्या कारण है, पंडित ने पूछा, तो वो आज तेरे क्या ये पोथी में लिखी है बात, ये बात पोथी में लिखी है, आज पढ़ते मैं कहते ये बात कहीं आसन में आती है सामने आती है, मैं कहते ये बात तो अनुभव की है, पोथी में कैसे लिखी, तो कैसे हो जाता है, उन्होंने जो उत्तर दिया मैंने किसी व्यास भाषी और टीका में नहीं लिखा ऐसा, सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रय तुम, सास बोलने से उनकी क्रिया फलवती हो जाती है, जैसे कहे वैसे हो जाता है, इसकी व्याख्या में दिखा रही हूँ, फूला सिंह ने जो बात कही बिल्कुल काला से भैंस गाय चराने वाले आदमी थे, पर भजन में लगे हुए थे हमें गायों को चराते, गाय ना गायों को कहते थे गौ माता सुनो ये खेत जितने हैं इसमें जो दिखता है वो सब तुम्हारा हिस्सा है, पर इसमें मनुष्य को हिस्सा मिला हुआ है तो मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा, तुम्हारा कोई मिलेगा पहले क्यों जाओ, दोनों का हिस्सा है, गाय खेत में नहीं जाती वो बैठे देखा करते अपने गाय को बार बार से खेत में नहीं जाती, ईश्वरों को पता लग गया भाई गया सरा न लोग गया हम खाते खेलते अपने अभी सुना देते गाय को तो ऐसी बात तो महाराज इसका कारण क्या था, वो बोले कि सच्चा बोलते बोलते हृदय इतना सच्चा होता है जो आगे होने वाली बात है सच्ची वो निकलती, झूठी बात निकलती नहीं, ये देखे दे नहीं देखे मैंने, तो बाबा जी ने उत्तर दिया अपड़ आदमी ने कि सच्चा हृदय हो गया सच्ची वाणी होगी सब में सच्चाई सच्चा हो गया तो न होने वाली बात उनसे निकलेगी कैसे, वो होने वाली है नहीं वो तो झूठी बात है, होने वाली वो सच्ची बात है, तो इस बात से जबान उनकी ऐसी निकलती है लोग कहते महाराज ने कह दिया ऐसा होगा, अरे कह दिया नहीं होने वाला ही है वैसा ऐसा होगा वही प्रकट होगी, ये व्याख्या हमने ग्रंथों में नहीं देखी उस लेख में देखी है, उन्होंने उत्तर दिया फूला सिंह जी ने, तो वो विवेक इतना जागृत होता है आपके ग्रंथों से नहीं होता, वो ग्रंथों के पढ़ने से नहीं होता है, जो अनुभवी पुरुष है उनके वचनों से जो ज्ञान होता है वो पुस्तकों में हुआ नहीं होगा नहीं कभी हो सकता नहीं, व्याकरण की बात मेरी बात आई समझ में, मैं पढ़ाई करी है, पढ़ाई करने पर भी व्याकरण की गहरी बात समझ में नहीं आई, साधक संजीव ने लिखने लगे तो लिखाने के समय में बातें आई जो किसी पूछे पूछे तो वो अर्थ मिला नहीं ठीक तरह से, वैसे वो विचार से आई बात, गीता की बात न प्राप्त इस ठीक समझ में नहीं आया, और मेरी दृष्टि में श्री गोविंद का जी गीता के विशेष जानकार ऐसे मैं मानता हूँ, और उनके लेख पढ़े तो मेरे पर असर पड़ा कि अच्छे से विद्वान है संस्कृत के, उनकी लिखी हुई टीकाएं हैं तो वो गीता के इतने गहरे नहीं उतरते, विद्या के जोर से लिखी हुई टीकाएं हैं, और इन टीका विद्या के जोर से नहीं अनुभव पर लिखी हुई है, ऐसा मेरा विश्वास है, हंसी हो झूठी हो आप माने न माने मेरा कोई आग्रह नहीं है, आप मानो भले मत मानो, उनसे मैंने पूछा न प्रदेश प्रियम प्राप्त नोदे प्राप्त सा प्रियम आधा श्लोक है, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो गए और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो गए, इतना इसका अर्थ है, तो शंका मेरी क्या रही प्रिय और अप्रिय का ज्ञान है कि नहीं, उनको प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो गए और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो गए, तो जो पहले अच्छा मंदार प्रिय अप्रिय ज्ञान है तो वो ज्ञान पहले प्रतिष्ठित उद्विजित क्या बात हुई, ये तो ज्ञान तो है उसको, नहीं तो प्रियम प्राप्य न प्रतिष्ठित अप्रियम प्राप्य न उद्विजित, मैं समझ नहीं आई बात, पूछी तो समझाने लगे तो मेरे नहीं होती गलत तो नहीं समझ में नहीं आई, हरिकृष्ण जी को समझाने लगे तो लगे समझ में नहीं आई, अब समझ नहीं आई मैं कहा हाँ हाँ कैसे बोलूं, हमारे समझ में आई नहीं, फिर आई समझ में प्रिय और अप्रिय जो है ये तो ज्ञान है, शरीर के अप्रिय अप्रिय मन के प्रिय अप्रिय इंद्रियों के प्रिय अप्रिय बुद्धि के प्रिय अप्रिय सिद्धांत के प्रिय अप्रिय इसे चलेगा कि ठीक है बेठीक है, ये ज्ञान ये तो विवेक है, पहले ये तो विवेक है ही, तो प्रिय को प्राप्त हर्षित होना ये विकार है और अप्रिय को प्राप्त उद्विग्न होना ये विकार है, विकार मिटते हैं प्रिय अप्रिय ज्ञान थोड़ी मिटता है, ज्ञान तो होता ही नहीं किसी के ज्ञान हो, ज्ञान तो सदा ही ज्ञान ज्ञान है, प्रकाश है वो तो प्रकाश उसको वो मिलेगा, प्रकाश दोष नहीं है, प्रकाश में प्रिय अप्रिय दोनों दिखते हैं ठीक से दिखते हैं, परंतु प्रिय हर्षित होना और उद्विग्न होना ये है विकार, तो निर्विकार जीवन होता है निर्विकार, ये प्रिय अप्रिय ज्ञान ये विकार नहीं है ये दोष नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाना नहीं तो बात ही कैसे करेगा आदमी, विवेक नहीं होगा तो ये विवेक तो होता है, फिर ये समझ में आया कि ये बात है तो ऐसी विभिन्न बात है, तो वो विवेक जिसने है उसके द्वारा सुनने से जो बोध होता है वो ग्रंथ नहीं होता, पूछा पढ़ लो ऊपर पंडित गणित बन जाए, नहीं होता है ऐसा। मैंने देखा है, हमारे सामने काम पड़ा है। वो विवेक नहीं है, पुस्तक की विद्या की विद्वत्ता से आठ लगती है, बाधा लगती है। कोई ठीक कहेगा तो खंडन कर देगा और अच्छी तरह से बोलो चुप कर देगा, इतनी विद्या याद है। परंतु वास्तविकता वाली जो तात्विक बात है वो नहीं बता सकेगा। मैंने व्याकरण पढ़ा और पढ़ाया और साधक संजीव लिखने लगे तो समझ में नहीं आई कर्म करती ये कैसे हुआ। उनको कारकों की ऐसी बात आती है, क्या छेड़े व्याकरण की बात है, तेरी बात समझ नहीं आई ठीक तरह से। फिर पूछा भी पंडित से, व्याकरण के आचार्य से पूछा, भाई हमारे इतने ग्रंथ पढ़े हुए नहीं है व्याकरण के, ऊंचे ग्रंथ पढ़े, उनसे पूछा तो उनसे हमारा समाधान नहीं हुआ। मैंने दो भेद तो बता दिया कारकों में, कारकों में दो भेद है, छह कारक है, छह कारकों में चार कारक है उसमें तो क्री धातु का प्रयोग है, एक दो में द धातु का प्रयोग है, कर्ता कर्म करण अधिकरण, कर्ता कर्म करण अधिकरण चार, और संप्रदान अपादान इसमें द धातु का प्रयोग है। ये तो हमारे विषय समझ में आ गया जब सोचा तो, परंतु ये मतलब क्या है हम समझे नहीं समझे। फिर इसे विचार करने से समझ में बात आई कि कर्म कर्ती प्रयोग तो कर्म हो तो वो है, संप्रदान अपादान में कर्म नहीं क्रिया नहीं है इसमें। जिसको दान दे उसमें क्या विकार होता है, अगर गांव से आया तो उस गांव में क्या विकार हुआ, उसमें क्रिया कुछ होती नहीं। क्रिया हो तो कर्म कर्ती प्रयोग होता है, और इनमें क्रिया है ही नहीं तो कर्म कर्ती प्रयोग कैसे लगे। क्रिया है जिनमें लगता है, कर्ता में क्रिया है, कर्म में क्रिया है, कर्ण में है, अधिकरण में है, इनमें तो क्रिया है। तो ये बात है, तो ये बात समझ में नहीं आती वैसे, और अनुभव होते सोचिए ठीक ठीक समझ में आती है ठीक बात ऐसी ऐसे है। तो विवेक जागृत होता है विवेक का आदर करने से, उसका नाम विवेक शक्ति। वो विवेक शक्ति मनुष्य मात्र में है, इस वास्ते मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। संसार के अधिकारी तो अलग अलग होते हैं, एक काम अधिकारी दूसरे काम अधिकारी वो नहीं होगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी सब है मनुष्य मात्र। पापी है, दुराचारी है, मूर्ख है, बेसमझ है, कैसा ही है, परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी वो सब है। लड़के होते हैं अलग अलग योग्यता वाले, पर माँ की गोद में जाने वाले माँ कहने का अधिकार सबको है। कपूत से कपूत को भी, सपूत से सपूत को भी, सबको माँ कहने का अधिकार नहीं है क्या? अपनी माँ को माँ कहने का अधिकार योग्य आदमी को ही है, अयोग्य को नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करने में योग्यता ही होती है, अयोग्यता नहीं है। योग्यता सब रहती है बुद्धि में, और योग्यता से परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती है। योग्यता से संसार में आदर हो सकता है, अयोग्यता में संसार आदर नहीं हो करेगा, पर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है क्यों उसके सब अधिकारी है। तो वो अविवेक इतना परमात्मा की प्राप्ति तक करा दे, ऐसा विवेक संपूर्ण मनुष्य के पास है। अब इसमें शंका और पूछो,
वो विवेक स्वतः काम नहीं आता जी,
स्वतः काम आदर जी में काम नहीं आता
जी,
स्वतः बिना उसका आदर उस तो दृष्टि जी में काम नहीं है। दृष्टि हमारे पास है, पर हम ऐसे देखे ही ना कैसे दिखेगा, दृष्टि तो है हमारे पास पर उधर हम देखे ही नहीं तो कैसे दिखेगा, बिना देर कैसे काम आएगा। उसने हमसे ख्याल ही नहीं किया, उसको आदर नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। दृष्टि होते हुए दिख जाती सब चीजें,
नहीं
दिखती। गंगा जी के किनारे हम बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे, बातें करते करते मैंने कहा देखो जो गंगा जी बह रही जो शब्द आ रहे, हाँ कल का शब्द आ रहा है, किसी देर शब्द सुना आपने, क्या नहीं सुना, तो शब्द नहीं था, कान नहीं थे, क्या नहीं था पूछा मैं, तो कान भी थे शब्द भी था, परंतु उस ख्याल नहीं कि हम बातों में लगे हुए गंगा जी बह रही है, शब्द का ख्याल ही नहीं कि शब्द हो रहा है। तो कान भी है और शब्द भी है, संयोग भी है, शब्द में तो पहुंचता भी है, परंतु हमसे ख्याल नहीं करते कैसे सुन लोगे, सुन नहीं सकते, आंखों के सामने बात हो जाए चला जाए नहीं दिखता, उसका ख्याल ही और तरफ है कैसे दिखेगा। तो विवेक की तरफ ख्याल ही नहीं, उसका आदर ही नहीं, तो कैसे विवेक आ जाएगा। है तैयार, आप चाहो तो काम दे देगा।
बातों महाराज जी, गंगा जी के शब्द में हमारी मन की वृत्ति नहीं गई।
यही बात है कि आपकी दृष्टि नहीं गई विवेक की तरफ।
विवेक में भी वृत्ति जाएगी।
हाँ, वृत्ति जाएगी। वृत्ति में कैसे होगा? साफ दिखने वाली चीज में भी वृत्ति नहीं जाएगी, आंख के सामने नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं।
वृत्ति के अधीन है क्या विवेक?
विवेक वृत्ति के अधीन नहीं है। सूर्य का प्रकाश आंख के अधीन नहीं है, पर प्रकाश की तरफ ख्याल नहीं होने से आंख से प्रकाश नहीं दिखेगा। प्रकाश अधीन नहीं है। सूर्य का ही कार्य प्रकाश है, सूर्य का कार्य नेत्र, तो कोई नेत्र है उनके अधीन थोड़े सूर्य प्रकाश है।
तीनों का सजाती है,
सजाती है, वो सजाती बना है इनका, परंतु उसे ख्याल न करने से कोई नहीं दिखता। और करो आप शंका करो, जितनी शंका हो, जो शंका उत्पन्न होती हो। ये ना प्रकृति का अंश है ना चेतन का अंश है। यूं देखे तो प्रकृति दो चीज है, उसमें विवेक दो दो चीजों का नाम है। तो प्रकृति और पुरुष के अलग अलग पने का विवेक है। ये भगवत दत्त है, स्वतः है।
तो
दो जड़ चेतन का विवेक क्या आप बताओ? जड़ चेतन दो के सिवा विवेक क्या है बताओ? विवेक बैरा की तो वेदांत पहले आता है, सबसे पहले सीखने उसमें। जड़ चेतन दोनों का अलग अलग होना नाम भी विवेक है। तो विवेक ही ज्ञान में परिणत है। विवेक का आधा भाग तो सत का है, आधा भाग असत का है। दो अलग अलग जानने का नाम विवेक है। जड़ चेतन एक ग्रंथ ही पड़ेगी, तो ग्रंथ क्या है? अविवेक है, ग्रंथ ही है। जड़ क्या है? कि जड़ है अहम। चेतन का अंश तो सत्ता है और जड़ का अंश अहंकार है। इन दोनों को मिश्रण हुआ, इसका नाम है जीवात्मा। बताओ इसमें तो जड़ चेतन दोनों है,
मिला हुआ है।
इसमें जीव नाम जड़ का है चेतन का है? बताओ। चेतन जीव नहीं, चेतन जीव हो तो मुक्ति हो जाए। चेतन की तो मुक्ति हो, चेतन में बंधन होता ही नहीं। चेतन में बंधन होता है,
है
जी? तो संधि में संधि जड़ है चेतन है? बताओ। मेरे से ये कहते हैं, तुम बताओ, आप बताओ साहब। तो संधि है वो क्यों है? अविवेक से है, अविवेक से संधि, विवेक से संधि रहेगी? संधि भेदन हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि, सज्जनते सर्व संशया, क्षीयन्ते तस्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावर्य। परमात्मा को बोध होने पर विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि भेदन हो जाएगी। तो भेदन होती क्या हो जाएगा? कि जड़ जड़ में चला जाएगा, चेतन चेतन में चला जाएगा, मुक्ति होगी। तो जीव की मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति ब्रह्म की होती है। जीव पर रहता ही नहीं हुआ, वो ग्रंथि भेदन हो गया, फिर जीव रहेगा क्या? वो जीव को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? जीव को तो संसार की प्राप्ति होगी, खाता उठ जाएगा। जड़ जड़ में गया, चेतन चेतन में गया, है जो रह गया। आप शंका करो इस बार, कैसे पता लगेगा? जितनी शंका हो शंका करो। नारायण 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 नारायण, खूब शंका करो, गहरे उतर करके करो शंका। शंका करने से विषय बहुत खुलता है, विषय खुलता है।
एक बात याद दिलाई, ठीक है, आप निषेध भी करते हैं इस प्रसंग के, है तो बाहरी मिठाई में जो बर्क देते हैं ना, तो आप बर्क का निषेध करते हैं, तो क्यों करते हैं?
ये जो बर्क बनता है, हमने वो खटखट सुना है, जाकर नहीं देखा है, परंतु बर्क बनाते हैं खट खट खट, वो देखा क्या है कि बर्क बना रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं? कि चांदी का छोटा सा टुकड़ा अथवा सोने का छोटा टुकड़ा बीच में देकर, खाल होती है गाय की, वो खाल के बीच में देकर के फिर खाल कूटते हैं, कूटते कूटते फैल फैल करके वो बर्क हो जाता है। ये बात तो ज्ञान था मेरे, परंतु वो खाल क्या होती है, बैल की आंतें होती है, उन आंतों का चमड़ा होता है गहरा, उस चमड़े से बहुत ज्यादा होता है, तो महाराज घास है लकड़ी जैसी वो उनके पाचन होता है, तो यहाँ से कैसी होनी चाहिए, ऐसी मजबूत आंतें होती है, मनुष्य नहीं पचा सकता घास को, वे घास को पचा लेते हैं, तो घास इतना कड़ा सेवन जैसी सेवन ना घास खीले की तरह होता है, और उनका घास बहुत बढ़िया होता है, उनके सेवन के घास का दूध मीठा होता है, घी में सुगंध आती है पिपरमेंट जैसी, तो वो पचता है गायों के, तो बैल की वह चामड़ी है वह पक्की बहुत ही किसी कूटो जल्दी नष्ट नहीं होती, तो उसके बीच में देकर उसको कूटते हैं, तो समड़े से बनता है और वो जीते जीते बैल का निकालते है जिनसे वो निकल बढ़ता है, मार्केट में निकाला तो वो मौत से मरता है, उसमें ऐसी चीज नहीं रहती, मौत मरने वाले का खून भी सूख जाता है, परंतु चट के मारा जाए तो जल्दी खून नहीं सूखता है, देरी से सूखता है, तो उनमें गीलापन बढ़िया रहता है, चमड़ा उसका बढ़िया होता है, मांस उसका बढ़िया होता है जो मारा हुआ, हमने बोर्ड भी देगा झटके का मांस मिलता है ना।
हाँ तो बनाने वाले से वहाँ कलकत्ते में बात की थी,
हाँ।
वो कह रहे हैं बात बिल्कुल सत्य है,
हाँ। जब कलकत्ते में पूछा आपने तो बनाने वाले के तो बात सत्य है, इस बात निश्चित करते ऐसा होते है। और बोलो कोई बात, मैंने बातें कही उनमें शंका करो, हमारा अध्ययन होगा, आप शंका करोगे आप ज्ञान होता है मेरे को, ऐसे मेरी बीती हुई बात है, मेरे अनुभव की बात है, जैसी शंका गहरी करते हैं उतना हमें बोध होता है, एकदम बात का ठीक ठीक दिख लगता है, शंका करने उपकार करते हैं समझने के लिए, ऐसे जिद करेंगे अच्छा महाराज आप जीत गए हम हार गए, हार खाली झगड़े मिट्टी
मुक्ति होती है तो चेतन है, वो चेतन में जाकर के मिलता है या वहीं पड़ा रहता है,
वहीं पड़ा रहता है, वह चेतन है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें चेतन न हो, ऐसे ही नहीं कुछ, चेतन और सत्ता सब जगह मौजूद है, बताओ आपको बता दूं मैं तुम है सब में, ये मनुष्य ही पशु एक थम्बा है, जड़ है, ये चेतन है, स्थावर है, ये जंगम है, अच्छा है, ये मंदा है सब में है कि नहीं है, ये सत्ता है, जानना है वो भी सब में है, आप पत्थर को भी तब जानते हो जो पत्थर में चेतन है, आपका चेतन है, दोनों की एकता होने से चेतन का ज्ञान होता है, मिष्टी में भी मिठास है, जीभ में गीलास है, दोनों मिलने से मिष्टी का ज्ञान होगा, जीभ अगर शून्य होगी तो कांकरे की तरह दिखेगा चमड़े में, तो मिष्टी मिठास पता नहीं लगेगा, और एकदम वो कांकरे की तरह होता है, जीभ में लेने पर जीभ का जो गीलापन है वो मिष्टी में जाता है, मिष्टी का मीठापन गीला में, वो गीला करके मिठा जाता है, मिठास आता है, ऐसे आगरी का ज्ञान हमारा ज्ञान एक होता है, तब घटोजम पटोजम इसका ज्ञान होता है, जैसे कि एकता से, इसको फल व्याप्ति कहते हैं, परमात्म तत्व में फल व्याप्ति नहीं वृत्ति व्याप्ति है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, फल वो आभास जो होता है उसको फल कैसे, वो आभास की एकता होने से ज्ञान होता है, फल व्याप्ति है, मन चीजों के देखने में आंख की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, सूर्य में प्रकाश की जरूरत नहीं है, आंख की जरूरत है, सूर्य को जो नहीं देखते कि लाओ दियो लाओ भाई दियो लाओ, सूर्य देखो उगा कि नहीं उगा, लाओ बेटी लाओ तो क्या करोगे, सूर्य उगा कि नहीं उगा देखेंगे, देखते हैं ऐसी वाल ऐसी लाय नहीं है तो दियो देर देखे ऐसी लाय लाए हो आप साहब जी है कि वो दृश्य जाएगा नहीं जाएगा
गीता जी के पास लोग हो जाएंगे
हाँ करो साहब उनको रहेगा उस लोग करो आप करो पता नहीं आपको श्लोक एक आधा श्लोक है तो मुक्ति हो जाए तो एक बात आई कि ये पांच श्लोक है ये भगवान के खुद के अवतार के संत महात्मा भी गीता अपनी तरफ से कह सकते हैं और यहाँ तक कह सकते हैं माम एकम शरणम भजाम तो अस्वरूपा विमोक्षिष्यामि यहाँ तक तो अगर तो कोई महात्मा कृपा करे किसी अंतरंग को कहे तो यहाँ तक कह सकते हैं मगर ये पांच श्लोक नहीं कह सकते भगवान के अवतार के मैंने अवतार लिया है वो अवतार ही कह सकते हैं वे गीता पाठ करते हैं गीता याद कर जाए सबको इस बात से रोजाना पाठ कराते सब याद कर रहे इसको।